الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس گروپ میں، فرسٹ ہمارے ٹریننگ سیشن میں. انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنے شیخ محترم شیخ ضیاء الحق بھٹی صاحب حافظ اللہ، ان سے انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے حج کے مناسک. اور اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو چنا ہے اس سفر کے لیے، اپنے گھر کی زیارت کے لیے اور حج کے مقدس فریضے کو انجام دینے کے لیے. آپ لوگ پہلے غور سے شیخ صاحب سے سارا لیکچر سنیے گا. اگر کوئی آپ لوگوں کے پاس سوال ہے تو وہ انشاءاللہ ہم اینڈ میں ان سوالوں کو دیکھیں گے. بیچ میں آپ لوگ انٹرپٹ نہ کریے گا. جو چیٹ باکس ہے اس میں آپ چیٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں اپنے سوالات کو. انشاءاللہ تعالی میں وہ سوالات لے کے اور آخر میں آپ لوگوں کی طرف سے بھی پوچھ سکتی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی ٹائم دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. دیکھیں گے کہ اگر ٹائم رہتا ہے تو پہلے ان کے سوالات لیے جائیں گے جو چیٹ باکس میں لکھیں گے، اور اس کے بعد اگر ٹائم بچے گا تو پھر آپ لوگوں کو موقع دیا جائے گا کہ آپ لوگ بھی سوال کر سکیں. تو میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ صاحب کی طرف جاتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب. جی،
ابھی آئی آواز؟
اب آپ کی آواز آ رہی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیر ہے شیخ صاحب آپ کے وقت کا. ہم سب منتظر ہیں آپ سے رہنمائی لینے کے لیے. آپ
جزاکم اللہ بارک اللہ.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی
آمین 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 آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے آپ تمام بچوں، بچیوں، بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس عظیم سعادت کے لیے اس سال منتخب فرمایا ہے. ثانیاً میں بھی آپ کے حق میں دعا گو ہوں، اور آپ بھی اپنے لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ آپ کا یہ سفر، آپ کا یہ حج اللہ کی توفیق سے حج مبرور بن جائے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحج المبرور لیس جزاؤہ الا الجنہ. حج مبرور ہی وہ حج ہے جس کا صلہ اللہ کی طرف سے جنت ہے. تو حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. یہ حج دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور حج ہی کے متعلق ارشاد ہے سنن ابی داؤد میں کہ اگر کوئی شخص سواری کے میسر ہونے کے باوجود، زاد راہ کی توفیق کے باوجود حج ادا نہیں کرتا تو پھر وہ بھلے یہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کے مرے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میرا جی چاہتا ہے میں عمال بھیجوں مختلف علاقوں میں، وہ معلومات کریں کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ان پہ جزیہ نافذ کر دیا جائے جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کر لے تو اسے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سال اس سعادت کے لیے آپ لوگوں کو منتخب کیا. تو سفر حج کی تیاری انتہائی ضروری ہے. سفر حج کی تیاری سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم زادہ راہ اپنے لباس وہاں کی ضروریات ہی پر اکتفا کریں، بلکہ حج کی تیاری کے اندر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ابھی سے اپنے حج کو مبرور بنانے کے لیے یہاں سے ظاہری طور پر، باطنی طور پر اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے جانا ہے. عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، دلوں کا تزکیہ، یہ چیز کہ وہاں جا کر یہ سب کچھ کریں گے یہ درست نہیں. یہاں سے ہی ہم اپنے اس سفر روانگی سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے جائیں، اور اس سفر کی تیاری کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ اس سفر کے اندر درپیش مسائل ہم نے اللہ کی توفیق سے سیکھنے ہیں. اس سے ہٹ کر وہ عام اذکار، ادعیہ، مسائل جو سفر حج کے ساتھ خاص نہیں ہیں وہ بھی اس مناسبت سے ہمیں سیکھ لینے چاہیے تاکہ بعد میں کام آتے رہیں. تو بنیادی جو چیزیں ہیں جن کو ہم نے ملحوظ نظر رکھنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے یہ جو تیاری کر رکھی ہے حج کے حوالے سے کیوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ان میں للہیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا. اس کے بعد ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا یہ پورا کا پورا سفر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو.
ابھی اٹھا ہوں یہ میں نہیں کٹ گیا.
فرمان باری تعالی، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ تعالی کی ان ہدایات کو سامنے رکھے کہ جب آپ نے احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، نیت کر لی ہے، ہر طرح کی بے حیائی، ہر طرح کی نافرمانی، ہر طرح کے جھگڑے فساد سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اور رزق حلال اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے تو اسی ہی عمل کی مثال دے کر فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر طے کر کے جاتا ہے، پرا گندا بال، مٹی سے اٹے قدم، اللہ اللہ لبیک لبیک کہتا ہوا، لیکن آگے سے جواب آتا ہے، نہ تیرے لبیک قبول نہ سعدیک قبول، اس لیے کہ تیرا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، لہذا تمام اعمال کی قبولیت کے ساتھ ساتھ اس حج کی قبولیت کے لیے بھی جہاں عقیدہ شرط ہے، سنت کے مطابق ہمارا عمل ہونا شرط ہے، للہیت اخلاص شرط ہے، وہاں اس سفر میں اور ویسے بھی رزق حلال، کھانا پینا پہننا یہ بھی شرط ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اقسام حج کے متعلق جانتے ہیں اجمالی طور پر۔ حج ادا کرنے کے تین مختلف طریقے شریعت نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ایک طریقے کو حج افراد کا نام دیا جاتا ہے، ایک کو حج قران اور ایک کو حج تمتع۔ عام طور پر آج کل جو حج ادا کیا جاتا ہے جس طریقے سے، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے، لیکن اجمالی طور پر حج افراد اور حج قران کے بارے میں بتا دیتے ہیں، لیکن تفصیلاً پھر حج تمتع ہی پر ہماری بحث ہوگی۔ اگر بعض حج افراد یا قران کے خواہش مند ہوں گے اور انہیں کسی طرح کا کوئی اشکال رہ جائے گا تو وہ آخر میں سوال کر سکیں گے۔ حج افراد یہ ہے کہ اشہر الحج، حج کے مہینوں میں شوال، ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کے آغاز میں کوئی شخص صرف حج کی نیت سے احرام باندھے، اللہم لبیک حجہ، احرام پہنے ہوئے یہ حرم مکی پہنچتا ہے، مرد ہے عورت ہے، اس حج افراد کے اندر شروع میں طواف اور صفا مروہ کی سعی یہ واجب نہیں ہے۔ حج افراد کے اندر ایک طواف اور ایک سعی ہے۔ اگر کوئی بندہ طواف قدوم کر لے یہ سنت ہے، طواف قدوم کے ساتھ صفا مروہ کی سعی بھی کر لیتا ہے تو حج کے دن طواف افاضہ کے ساتھ اس کو اس سعی کی ضرورت نہیں پڑتی، اور براہ راست احرام باندھ کر منیٰ کی طرف چلا جائے، طواف اور سعی نہ بھی کرے، صرف یوم النحر 10 تاریخ کو طواف افاضہ اور صفا مروہ کی سعی کر لے تو کفایت کرتا ہے، اور اس حج میں قربانی نہیں ہے، اور احرام جب سے باندھتا ہے بندہ 10 تاریخ کو قربانی کے بعد حلق یا قصر، اب افراد میں چونکہ قربانی نہیں ہے تو لہذا جمرہ عقبہ کی رمی اور قصر یا حلق کے بعد احرام کھول سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ حج قران انہی مہینوں میں شوال، ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کے آغاز میں اللہم لبیک حجاً و عمرہ، حج اور عمرے دونوں کی اکٹھی نیت کی جاتی ہے، اس میں قربانی شرط ہے۔ اس میں بھی مشروع جو چیز ہے وہ بھی एक तवाफ और एक सई। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो अमल साबित है, जो राजे है, क्या आपने जाते हुए उमरा किया? उमरे के अंदर तवाफ बैतुल्ला, सफा मरवा की सई और फिर हल्क और कसर होता है, इस तीसरी चीज को छोड़ दिया गया। तवाफ और सफा मरवा की सई और फिर उसी एहराम में ही रह गए। और फिर 10 तारीख को जो तवाफ इफाजा, जिसकी तफसील आगे आएगी, उसके साथ सफा मरवा की सई की हाजत नहीं रहती, लेकिन इसमें कुर्बानी शर्त है। कुर्बानी के बाद हल्क या कसर के बाद एहराम खोला जाता है। अब आते हैं हम हज तमत्तो की तरफ। हज तमत्तो में उम्रा अलहदा किया जाता है और हज अलहदा किया जाता है। हुज्जाजे कराम पहले उम्रा अदा करके एहराम खोल देते हैं, फिर 8 जिलहज, जो कि योम तरविया है, उसको हज का एहराम बांधते हैं। तो लिहाजा हम हज तमत्तो की तफसीलात की तरफ चूंकि जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम उम्रे के अमल को समझेंगे कि उम्रा मसनून व मशरू, इसका क्या तरीक़ाकार है। और याद रखिए, ये उम्रा जो है ये आम उम्रा नहीं होगा, ये उम्रा हज का उम्रा कहलाएगा, क्योंकि ये उम्रा और हज ये दोनों मिलकर हज तमत्तो बन जाएंगे। तो उम्रे को सीखते हैं सबसे पहले हम। नबी अलैहि सलातो वसलाम ने मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ जिहाद से आने वाले लोगों के लिए मवाकीत मुकरर फरमाए हैं। हम सब आफाकी लोग हैं, हो सकता है कि हम में इस वक्त कोई ऐसा भाई या बहन
क्या
भी
करे, इधर तो
करीब
बंद
हो
की तो
कि
यार,
जो आफाकी ना हो।
इधर
आफाकी
तो बंद
उनको
की तो
कहते
यार,
हैं कि
इधर
जो उन मवाकीत की हुदूद से बाहर रहते हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है, जैसे यलमलम, जुलहुलैफा, जुहफा, कर्नुल मनाजिल, ये नबी अली सलात वसलाम ने जगह बताई हैं जो इन हदूद से बाहर रहते हैं, उन्हें आफाकी कहा जाता है। और उनके लिए नबी अली सलाम ने यही बयान फरमाया कि वो जब इन मकामात में से किसी मकाम से गुजरें, तो वो यहां से एहराम बांधें और उम्रे या हज जिस सफर के लिए आ रहे हैं उसकी नियत कर लें। आज सफर हमारा ज्यादातर जहाज का सफर है, या कुछ अपनी गाड़ियों के जरिए कुर्बो जवार के ममालिक वाले जाते हैं,
कोई और जो है ना, हम क्यों नहीं
सहूलत
कर सकते
मयसर
भाई।
है, लेकिन जहाज में जरा परेशानी से बचने के लिए एहराम पहले ही बांध लिया जाता है। याद रखिए कि हज के 4 फराइज हैं, इनमें से कोई एक भी फौत हो जाए, अरकान हैं ये 4, एक रुकन भी रह जाए तो इंसान का हज अदा नहीं होता, हज दोबारा करना पड़ता है। ना उसका कोई फिदिया है, ना कफारा है, ना दम है, एक यही नियत के साथ एहराम। वकूफ अरफा, तवाफ इफाजा और सफा मरवा की सई, ये वो अरकान हैं कि इनमें से कोई एक भी रह जाए तो इंसान का हज नहीं होता, फरीजा अदा नहीं होता, उसको दोबारा करना पड़ता है हज। एहराम मर्दों के लिए दो बगैर सिली यानी इंसानी जिस्म की साख्त के मुताबिक सिली हुई ना हो, फट जाए उसकी सिलाई की जा सकती है। दो चादरें अगर सफेद रंग की हों तो अफजल है, दो एक चादर बतौर इजार तहबंद के तौर पर और दूसरी चादर अपने दोनों कंधों पे रख के जिस्म पर ओढ़ लेनी है, इस तरह कि सर नंगा रह जाए। जबकि खवातीन का एहराम उनका आम लिबास है, उसमें न रंग की कैद है न सिले बगैर सिले की कैद है, जो आम दिनों में पहना जाने वाला लिबास है वही लिबास खवातीन का एहराम है। सिर्फ दो हिदायतें हैं नबी अली सलात वसलाम की तरफ से कि खवातीन एहराम में हाथों में दस्ताने न पहने और चेहरे पे नकाब न लगाए। हिजाब से नहीं रोका, हिजाब एक बड़ी चादर ओढ़कर जहां तक मुमकिन है हिजाब करना चाहिए, उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात से साबित है। चादर सर के ऊपर से नीचे चेहरे की तरफ लटकाई जा सकती है, साइडों से चादर पकड़कर चेहरा छुपाया जा सकता है, चेहरे से चादर का लग जाना इसमें कोई हर्ज नहीं। मुस्तकिलन नकाब जिसे उर्दू में ढाटा कहते हैं कि मुंह पे बांध देने वाला कपड़ा, ये इस्तेमाल नहीं करना। ये दो पाबंदियां हैं खवातीन के लिए हालत एहराम में। एहराम से कबल गुस्ल मसनून है, एहराम से कबल सफाई सुथराई उमूर हजामत से फारिग होना मशरू व मसनून अमल है, अफजल अमल है, लेकिन यह वाजिबात व फराइज में इनका शुमार नहीं होता, ये मुस्तहबात हैं। अगर गुस्ल रह जाए या दीगर उमूर में से कोई अमर रह जाए तो उस शख्स का हज नाकिस ना होगा, हज अदा हो जाएगा। मीकात से गुजरते हुए अगर हमारा सफर जहाज का है और फ्लाइट जिद्दा की है तो हमें मीकात यलमलम पड़ेगी,
उसकी रिकॉर्डिंग सुन,
मैंने कर दिया ओके।
हाँ बस ठीक है, हटा दो।
और अगर सफर जो है वो इस तरह है कि फ्लाइट मदीना की है, फिर बगैर एहराम के जाना है, फिर मदीना से मक्का की तरफ जब रवानगी होगी तो मदीना से निकलते ही चंद किलोमीटर की मसाफत पर ज़ुलहुलैफा का मकाम है, ये हमारा मीकात होता है जहां से नियत की जाती है एहराम बांधा जाता है। और बसों के जरिए जाने वाले बेशतर लोग मुख्तलिफ अतराफ से गुजरते हैं, किसी को जोहफा पड़ता है, किसी को यही ज़ुलहुलैफा और किसी को कर्नुल मनाजिल भी पड़ता है। तो मीकात पर पहुंचकर अगरचे सहूलत के पेश नजर चादरें पहले ओढ़ी जा सकती हैं मर्द हजरात के लिए, लेकिन नियत उसी मीकात से ही करनी है। दिल में इरादा पहले से रखा हुआ है लेकिन मीकात से गुजरते हुए पता ना चला, याद ना रहा, तो ये शरी उजर है, वही पहले वाली नीयत मोतबर है। लेकिन बगैर इरादे बगैर नीयत के मीकात से जानबूझ कर गुजरना ये नाजायज है, और ऐसा करने से या तो वापस मीकात पे आके वहीं से एहराम बांधना और नियत करनी होगी, या फिर आगे निकल गए तो फिर वहां से एहराम और नियत तो होगी लेकिन उस पे दम लाजिम आ जाएगा। उम्रे की नियत किस तरह करनी है, किन अल्फाज के साथ? अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरतन, और फिर एक बार पूरा तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमद वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बस इस नियत के बाद आप मुहरिम हो जाएंगे। मुहरिम, क्योंकि मुहरिम होना एक हालत है। आप अब अगरचे चादरें वो लिबास या ख्वातीन ने वो कपड़े पहले से पहने हुए जिन्हें उन्होंने एहराम बनाना है, लेकिन मुहरिम उस वक्त होंगे जब उम्रे की नियत करेंगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरतन। बाज हुज्जाजे कराम हज बदल की नीयत से जा रहे होते हैं, तो वो नीयत करते हुए अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरतन अन कहकर जिसकी तरफ से उम्रा अदा करना है, हज अदा करना है, उसका नाम लेंगे। एक बार तलबिया और फिर मुसलसल तलबिया, दीगर अस्कार, अदाया, बातचीत की जा सकती है, आराम किया जा सकता है, खाने पीने की हाजत है, सब कुछ। लेकिन कोशिश की जाए कि फजूलियात से इज्तनाब किया जाए। अब आप हालत एहराम में हैं, एहराम की पाबंदियों को मलहूज रखें, खुशबू लगाना, बालों का तोड़ना, नाखून काटना, ये बिल्कुल हराम है, ये एहराम की पाबंदियां हैं। एहराम की पाबंदियों में से कोई पाबंदी अगर कोई शख्स तोड़ता है तो शरीयत ने उस पे जो फिदिया रखा है वो तीन शक्लों में से किसी एक का इख्तियार करना है। कुर्बानी देनी है, जो कम से कम एक बकरी है, या 6 मिसकीनों को खाना खिलाना है, या 3 रोजे रखने हैं कम कम। बंद ही कर रहा। तो इस बात का ख्याल रखना है कि एहराम की जो हुर्मत है, एहराम की जो पाबंदियां हैं, वो मलहूज रहे। एहराम से पहले खुशबू लगाना जायज था लेकिन एहराम के कपड़ों को नहीं। बस हालत एहराम में कसरत के साथ अस्कार, दुआएं, फजूलियात से इज्तनाब। अब आप आम हालत में नहीं रहे, आप मुहरमीन हैं। कुछ पाबंदियां हालत एहराम की हैं और फिर कुछ पाबंदियां हुदूद हरम की हैं। मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच जाने के बाद जो हुदूद हरम की पाबंदियां हैं वो आप एहराम में हों या ना हों उनका ख्याल रखना है। वहां रहते हुए नबी अली सलात वसलाम ने इतनी ताकीद फरमाई कि यहां तक कि वहां के दरख्तों के पत्ते, दरख्तों की टहनियां भी नहीं तोड़नी। तो हुदूद एहराम में पहुंच गए। बाज लोगों का ख्याल होता है कि पहुंचने के साथ ही सबसे पहला काम हमें उम्रा अदा करना है। नहीं, ऐसी शरीयत में कोई पाबंदी नहीं। आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गए, जो आपको रिहायश और होटल मुयस्सर है, वहां जाने के बाद आपको आराम करने की जरूरत है, आराम करें, खाने पीने की हाजत है, खाएं पिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी असफार किए हैं, हदीस से साबित है कि आप मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर एक वादी थी, आप उस वादी जी तुवा में ठहर जाते, रात गुजारते, आराम करते, सुबह की नमाज वहीं पढ़ते और फिर ताजा दम होकर आप हरम शरीफ तशरीफ लाते ताकि इबादत दिल लगा के की जा सके, क्योंकि ये इबादत अहम तरीन इबादत है। जब इंसान थका हुआ हो तो फिर कोशिश करता है जल्दी से जल्दी जान छुड़ाए, नहीं, दिल लगा के इबादत करनी है। इसलिए इससे पहले अगर थकावट है, हिम्मत साथ नहीं देती, तो आराम कर लेना चाहिए। वो तलबिये का अमल जारी और सारी है, ताकि जब उम्रे की नीयत से मस्जिदुल हराम में दाखिला होना है, बेतुल्ला पे नजर पड़नी है, तो तलबिया मुनकते हो जाएगा, तलबिया मुनकते हो जाएगा। ये बात कि बेतुल्ला पे नजर पड़ती है तो पहली दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है, ये बात, ये सोच तो दुरुस्त नहीं, बल्कि इसमें तो तंग नजरी महसूस होती है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआएं मांगे, वहां अल्लाह सारी दुआएं कबूल फरमाएंगे। आप अल्लाह के मेहमान हैं। हज, उमरा करने वाला, हज करने वाला और मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, इन तीनों को अल्लाह का मेहमान करार दिया गया है। अल्लाह ताला के मेहमान हैं। अल्लाह वो जात है जिसने मेहमान के इकराम का हुक्म अपने बंदों को दिया है, तो अल्लाह तो बहुत ही ज्यादा अपने इन मेहमानों की इज्जत फरमाता है। अल्लाह के मेहमान भी वाकई अल्लाह के मेहमान बन के दिखाएं, मस्जिदुल हराम में दाखिल हो जाएं, मस्जिद में दाखिले की दुआ, निकलने की दुआएं वही अदाया है जो रोजमर्रा हमें याद होनी चाहिए हर वक्त। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि कुछ अज़कार वो जो हज से मुतालिक नहीं, जो हर वक्त हमारी जरूरियात हैं, और अगर याद नहीं है किसी को तो इस मुनासबत से वो भी याद कर ले, क्योंकि ये सिर्फ हज के लिए नहीं है कि घर से निकले तो घर से के निकलने की दुआ पढ़ी जाए, ये सिर्फ सवारी पे बैठकर सवारी की दुआ हज के सफर के लिए नहीं है, ये हर सफर की है, हर वक्त की है। तो हमें अगर याद है तो बेहमदिल्ला, नहीं तो अल्लाह ने एक मौका दिया है अपने आप को तब्दील करने का, और तब्दीली ऐसे ही नजर आएगी कि हम इन अदाया को, अस्कार को याद करें और बकिया जिंदगी में अपने मामूलात में इनको शामिल कर लें। जी, अब हमने उम्रा अदा करना है, उम्रा मस्जिदुल हराम में दाखिला मिल चुका बिहम्दिल्लाह ताला। उम्रा के अंदर मोटी मोटी तीन चीजें हैं, बैतुल्लाह का तवाफ है, सफा मरवा की सही है, और फिर एहराम से निकलने के लिए मर्दों के लिए हल्क अफजल है, कसर भी जायज है, लेकिन पूरे बाल, पूरे सर से बालों का काटना, खवातीन अपने बाल उंगली के पोरे के बराबर या इससे भी कमोबेश काट लें, एहराम से बाहर निकल जाते हैं। मर्दों के लिए एहराम की चादर को अब थोड़ा सा तब्दील करना है, हालते इस्तिबा में आना है मर्दों ने, हालते इस्तिबा। इस्तिबा ये है कि अपने दाहिने कंधे को नंगा करना है। अब तक जो चादर दोनों कंधों पे डालकर लपेट रखी थी, अब दाई जानिब से उस चादर को पकड़कर कंधे के नीचे से लेकर दूसरे कंधे पे डाल दें, ये दाया कंधा नंगा कर लेना, इसको इस्तिबा कहते हैं। ये एहराम کی حالت اس طرح تبدیل کر کے عمرہ شروع کرنا ہے. بیت اللہ شریف کے چار کونے ہیں, حجر اسود ایک کونے میں نصب ہے. یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا ہے. اس پتھر کی بڑی فضیلتیں سیر اور تاریخ کی کتابوں میں آپ نے پڑھی اور سنی ہوں گی. اسی کونے سے طواف کا آغاز کرنا ہے سب نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف شروع کرنے کے لیے جو طریقہ کار متعین فرمایا ہے وہ یہ کہ حجر اسود کا بوسہ دے اللہ اکبر کہہ کر. اللہ اکبر سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی ثابت ہے, لازمی نہیں. اگر حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا جا سکتا, ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتا ہے, تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دے دے, لیکن اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لگائے. ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا, کوئی ہاتھ میں کوئی چیز ہے, لکڑی ہے, پرس ہے, وہ اگر حجر اسود تک جا سکتا ہے تو وہ لگا کر اس کو بوسہ دے. اللہ اکبر کہہ کے لگائے اور اس کو بوسہ دے. یہ بھی ممکن نہیں, جو کہ آج بہت ہی مشکل ہوتی ہیں یہ تینوں شکلیں. تو دین اسلام نے ہمارے لیے بڑی آسانی رکھی کہ دور ہی سے حجر اسود کی طرف اللہ اکبر کہہ کر طواف کو شروع کرنا ہے. ان چاروں صورتوں کو استلام کہا گیا ہے. استلام صرف یہ نہیں ہے, بلکہ چاروں صورتیں یہ استلام کی صورتیں ہیں. ان میں سے جو میسر ہو اسے اپنایا جائے, اجر و ثواب میں سب برابر ہیں. حجر اسود تک پہنچنے کے لیے بہت ساری حدود کو پامال کرنے سے بہتر ہے دور سے استلام کرنا. حجر اسود کی نشانی ایک سبز بتی سامنے مسجد الحرام کے کونے میں لگا دی گئی ہے کہ اس کے سیدھ میں پہنچ کر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ حجر اسود کا کونا ہے. اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف کا آغاز ہے. مردوں کے لیے پہلے تین چکروں میں رمل ہے. رمل ایک چال کا نام ہے. ایڑی اٹھا کر اپنے پنجے کے بل تھوڑا اچھل اچھل کے چلنا, دل کی چال جسے کہا جاتا ہے اردو میں, اچھل اچھل کے چلنا, یہ پہلے تین چکر مردوں کے لیے یہ مشروع ہے. خواتین, بزرگ اور بیمار حضرات اس سے مستثنی ہیں. طواف کے دوران بیت اللہ کو نہ دیکھا جائے یہ غلط بات ہے. بیت اللہ ہی کا طواف کیا جا رہا ہے, بیت اللہ پہ نظر کیوں نہیں پڑے گی؟ طواف کے پہلے چکر کی یہ دعا, دوسرے کی یہ, تیسرے کی یہ, ساتوں چکروں میں دعاؤں کا تعین و تقرر سنت سے ثابت نہیں ہے. طواف کے دوران اجتماعی طور پر بآواز بلند ایک شخص یہ دعائیں کہلوائے, دوسرے پیچھے سے بآواز بلند کہیں, سنت سے ثابت نہیں ہے. دوران طواف آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں, دعائیں مانگیں, تسبیحات, تحلیلات, تکبیرات سب جائز ہیں. دوران طواف حاجت کے مطابق کوئی بات بھی کی جا سکتی ہے. کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, بات کرنے کی حاجت ہے, وہ بھی کی جا سکتی ہے. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے हजरे अस्वद से पहले वाला कोना रुकने यमानी कहलाता है, जब बैतुल्ला से घूम करके वापस हम हजरे अस्वद से पहले वाले कोने यानी रुकने यमानी तक पहुंचेंगे, तो रुकने यमानी के हर चक्कर में या किसी चक्कर में अगर आसानी हो तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर उसके कोने को सीधे हाथ से छूना सुन्नत है, लेकिन अगर रश की वजह से वहां तक पहुंचना मुश्किल है तो दूर से गुजरते हुए इस्तेलाम नहीं है, और अगर वहां सहूलत मिली है पहुंचने की तो बोसा भी नहीं है, हाथ लगाना है, हाथ को चूमना भी नहीं है। ये सब नाजायज उमूर है जो बकसरत आप होते हुए वहां देखेंगे। बस अगर सहूलत मुयसर हो तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर उसके कोने पर वहां से गिलाफ काबा भी हटा हुआ होता है मोमन हाथ लगाए, ये सुन्नत है। रुकने यमानी से हजरे अस्वद तक अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरत हसना वकीना अज़ाबन्नार, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरत हसना वकीना अज़ाबन्नार, ये सुन्नत से साबित है। हजरे अस्वद तक पहुंच गए, अब दूसरे चक्कर का आगाज है। 7 चक्करों के मजमुए का नाम तवाफ है, हर चक्कर को शौत कहा जाता है, ये अश्वात है। दूसरे चक्कर का आगाज भी उसी तरीके से अल्लाह अकबर हजरे अस्वद के सीध में आकर इस्तेलाम से, और फिर वही तस्बीहात तहलीलात तकबीरात अदाया। दूसरा चक्कर मुकम्मल होगा, तीसरा मुकम्मल होने पर रमल जो दुल की चाल मर्द हजरात चल रहे होंगे, आज रश की वजह से वो सही तरीके से उतना चला तो नहीं जा सकता, थोड़ी सी अदा बना लेना ताकि सुन्नत पे अमल हो जाए, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हर चक्कर का आगाज इस्तलाम के साथ होगा, अल्लाह अकबर। 7 चक्कर मुकम्मल होंगे, सातवां इस्तलाम शुरू में हो चुका। अब 7 चक्कर मुकम्मल होने के साथ दौराने तवाफ आप बार बार गुजर चुके होंगे मकाम इब्राहिम के पास से। मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिस पत्थर पर खड़े होके इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई थी, जिस पे सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदमों के निशान हैं। वो आप वहां से गुजरते हुए जिस पत्थर को बंद किया हुआ है वहां से उसको देखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आयात बय्यिनात में मकाम इब्राहिम को खुसूसियत के साथ जिक्र फरमाया, ये अल्लाह की कुदरत की खुली निशानी है। लेकिन बहुत सारे लोग बाहर शीशे को उसके खोल को चूम रहे होते हैं, हाथ लगा के उससे तबर्रुक के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, ये अकीदे की कमजोरियां हैं। सब कुछ उसे देखें, खुश हूं, ये अल्लाह ताला की निशानी है, अल्लाह ने देखने का अपनी आंखों से मौका मुयस्सर फरमाया है। तो अब 7 चक्कर मुकम्मल हो जाने के बाद उसी मकाम इब्राहिम के पीछे जहां सहूलत मिले, अगर रश की वजह से करीब में नहीं तो मस्जिदुल हराम में जहां भी मुमकिन हो 2 रकात नमाज अदा करनी है, लेकिन वो 2 रकात मकाम इब्राहिम की 2 रकात कहलाएंगी। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ये आयत का टुकड़ा पढ़ते हुए आप मकाम इब्राहिम की 2 रकातें अदा करेंगे। मर्द हजरात इस तिबा की कैफियत खत्म कर देंगे, कंधे को फिर से ढांक लेंगे। बस अब दौराने इस सफर रोजाना का तवाफ नफली होगा या हज का तवाफ होगा, किसी भी तवाफ में इस तिबा नहीं है। इस तिबा सिर्फ और सिर्फ ये तवाफ कुदूम में है। ये तवाफ कुदूम कहलाता है पहला तवाफ। ये तवाफुल उम्रा में है। कोई और उम्रा अदा करता है तो उम्रे के तवाफ में भी इस्तिबा है। दो रकात नमाज अदा इस तरह करनी है कि पहली रकात में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल काफिरून की तिलावत की जाए, दूसरी में सूरतुल इखलास की। अगर सहूलत मयसर हो तो फिर थोड़ा सा पीछे आके एक इस्तेलाम फिर कर लिया जाए अल्लाह अकबर कह के। लेकिन अगर रश भीड़ तो लाजमी नहीं है। जमजम का पानी पीजिए, सुन्नत है। नबी अलैहि सलातो वसलाम ने प्यास से ज्यादा आब जमजम इस मौके पर नोश फरमाया। जमजम जो कि गिजाइत से भी भरपूर और शिफा भी है, पानी पीजिए, दुआएं मांगिए और फिर सफा की तरफ बढ़ जाइए। कुरान मजीद की ये आयत पढ़ते हुए, इन सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह अब्दाउ बिमा बदा अल्लाहु बिह, ये फरमाते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफा पहाड़ी पर चढ़ गए। सफा और मरवा ये दो पहाड़ियां हैं। इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। ये शाइर है, ये बड़ी अजमत वाली पहाड़ियां हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयत पढ़ते हुए जब आप सफा पहाड़ी पे चढ़े, बैतुल्ला का रुख किया, हाथ उठाए, तीन बार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और तीन बार ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह अंजद वअदह ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, और इसके बाद तीन बार ये पढ़ने के बाद कोई भी आप दुआएं मांगना चाहें, ये कबूलियत की जगह है, यहां खूब दुआएं मांगे। फिर सफा से मरवा की तरफ चल पड़े और रास्ते में मीलैन अखजराइन सब्ज बत्तियों वाली जगह आएगी। याद रखिए यही वो जगह है जहां हमारी माँ, रूहानी माँ सैयदा हाजरा अलैहा सलातु व तस्लीम अपने लख्त जिगर इस्माइल की प्यास को मद्देनजर रखते हुए पानी की तलाश में जो कभी सफा पे चढ़ती कभी मरवा पे, ये सतह है जमीन थी, यही टुकड़ा सिर्फ यहां नीचे उतर कर वहां तक थोड़ी दौड़ लगाती और फिर आगे मरवा की चढ़ाई शुरू हो जाती। अल्लाह ताला को अपने इन प्यारे बंदों की अदाएं किस तरह पसंद आई है कि अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक इनको मुसलमानों के लिए इबादात के तौर पर फर्ज कर दिया है, लागू कर दिया है। जब इंसान अल्लाह का हो जाए तो अल्लाह भी अपने बंदों का हो जाता है। ये पूरे सफर में इन चीजों को आप बार बार नोट करें कि कहीं देखिए इब्राहिम खलीलुल्लाह की कोई अदा, कहीं इस्माइल जबीहुल्लाह की कोई अदा, ये सारी अल्लाह ताला को ऐसी पसंद आई है कि अल्लाह ने मशरू व मसरून फरमा दी। वहां से मर्द हजरात के लिए सिर्फ सही है, दौड़ना है। बाद सहाबा से रब्बिग फिर वरहम इन्नकल अअज्जुल अकरम पढ़ना भी साबित है दौड़ते हुए। फिर इस पूरे मरवा तक के सफर में आप कोई भी जिक्र करें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया क्या है ये तवाफ, क्या है ये सही, ये रमी, रमयुल जिमार क्यों मशरू किया गया? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ले इकामत जिक्र अल्लाह, बैतुल्लाह का तवाफ, सफा मरवा की सही, रमयुल जमरात, अल्लाह के जिक्र को बुलंद करने के लिए मशरू व मसनून किया गया। मरवा पे पहुंच जाए ये एक चक्कर हो गया पूरा, वापस सफा तक दो हो जाएंगे, मरवा पहाड़ी पे चढ़ के फिर किबला रुख होकर वही दुआ पढ़नी है। सुन्नत से ऐसे ही साबित है, किबला रुख होकर 3 बार अल्लाह अकबर, 3 बार ला इलाह इल्लल्लाह वहदा ला शरीक लहू लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहुव अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाह इल्लल्लाह वहदा अनजद वअदा वनसर अब्दा वहजम अलअहजाब वहदा। और फिर कोई भी दुआ मांगे, कबूलियत की जगह है। ये दूसरे चक्कर का आगाज है, फिर सफा की तरफ आ जाइए, ये दो चक्कर हो जाएंगे, सफा पे दुआ करके मरवा की तरफ पहुंचेंगे, 3 हो जाएंगे। हर बार हर चक्कर के शुरू में दुआ है, लेकिन 7वां चक्कर जब मरवा पे मुकम्मल होगा तो फिर दुआ नहीं। 7 चक्कर मुकम्मल हो गए बिहम्दिल्लाह ताला, उम्रे का अमल मुकम्मल हुआ, अब एहराम से निकलने के लिए हल्क व कसर की शर्त बाकी रह जाती है कि मर्द हजरात के लिए हल्क अफजल है बालों का मुड़वाना, और कसर भी जायज है। नबी अली सलाम ने फरमाया रहम अल्लाह मुहल्लकीन, अल्लाह रहम फरमा हल्क कराने वालों के लिए, 3 बार ये दुआ फरमाई, 1 बार मुकसरीन के लिए। और खवातीन जो है वो भी एहराम की हालत से बाहर निकलने के लिए अपने बालों, पूरे के पूरे बाल या एक हिस्से बाल को पकड़ कर थोड़े से बाल उंगली के पोरे के बराबर या इससे कमोबेश काट लें तो एहराम की हालत खत्म हो गई, उम्रा बिहम्दिल्लाह ताला इस तरह मुकम्मल हो जाता है। तो आज की हमारी इस नशस्त में इख्तसार के साथ हमने उम्रे के अमल को समझा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली नशिस्त में हम हज के अमल को समझने की कोशिश करेंगे कि जो कि यौम-उत-तरविया 8 ज़िलहिज्जा से फिर से एहराम बांध करके मिना, अरफात और मुजदलफा का सफर होगा हमारा। लिहाजा आज की इस नशिस्त में मैं इसी पर इक्तफा करूंगा, और फिर आप भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बच्चियों को मौका दिया जाएगा कि अगर इन बात कोई बात ना समझ सके या आपके दिल में कोई इश्काल है तो वो आप हमारे सामने रख सकते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा शेख साहब, आपने इतने अच्छे तरीके से बयान फरमाया है कि खैर सब बातें समझ में आ गई होंगी सबको। अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए और हमारा भी ये सारा सीखना और बैठना कबूल करे। शेख साहब, कुछ सवालात आए हुए हैं यहाँ पे, कुछ प्राइवेट मैसेज किए हुए हैं कुछ लोगों ने।
जी
पहला
जी
सवाल ये है कि तवाफ और सही करते हुए क्या हम जूते पहन के ये कर सकते हैं?
जूता हमारे लिबास का हिस्सा है। मुहद्दिसीने कराम ने जूते के अहकाम किताबुल लिबास ही में बयान फरमाए हैं। अलबत्ता जूते को बकिया लिबास से थोड़ा सा मुअख्खर दर्जे मकाम में पीछे इसलिए समझा जाता है कि वो चूंकि जमीन के हर हिस्से से टच होता रहता है, बाकी वैसे वो लिबास का हिस्सा है। अगर हमें यकीन है कि वो पाक साफ सुथरा है, उसमें किसी तरह की कोई नजासत नहीं है, तो जूते पहनकर तवाफ और सही करने में कोई हर्ज कोई कबाहत नहीं।
सर
जी
दूसरा सवाल यहाँ पे ये यह है कि मेरे ख्याल इनका मकसद कहने का कफारा था, उन्होंने फितिया लिख दी है। वो पूछ रहे हैं कि अगर हमसे कोई भी ऐसी गलती हो जाती है जिसपे कफारा बनता है, तो क्या तमाम गलतियों पे हम एक ही कफारा देंगे या हर गलती का अलग अलग कफारा हमें देना होगा?
एक ही फिदिया जो है वो दम की शक्ल है या जो चीज भी है, वो सब गलतियों की तरफ से किफायत करेगा। अलबत्ता एक गलती हुई उसका दम या कफारा या फिदिया दे चुके, उसके बाद फिर कोई और गलती हुई तो फिर दूसरा दम आएगा, फिदिया आएगा। लेकिन अगर इससे पहले दो तीन गलतियां जमा हो गई हैं, एक ही फिदिया या दम दे दिया है, तो वो सब की तरफ से किफायत करेगा।
शेख साहब, अगर एंड में मतलब आखिर में एक दफा दे दिया जाए तो क्या वो फिर सही होगा, इंतजार किया जाए?
अगर तो कोई गलती हुई है तो बिल्कुल ठीक है वहां रहते हुए, क्योंकि हुदूद हरम में ही अगर दम देना है खास तौर पर, तो वो तो हुदूद हरम ही के मसाकीन के लिए है, तो बिल्कुल अय्याम हज खत्म हो जाने के बाद भी दिया जा सकता है। अलबत्त ये चीज के हमसे कोई गलती हुई तो नहीं है, लेकिन एहतियाती दम हम दे रहे हैं, तो वो उसे एहतियाती दम ना हो, वो एक सदके के तौर पर, कुर्बानी के तौर पर हम करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर वाकई कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें मुआखर किया जा सकता है, और वहां रहते हुए ये अपना दम या फरीजा जो भी बनता है वो अदा करके आए।
एक और सवाल है कि क्या तवाफ के लिए वुजू शर्त है?
नबी अली सलात वसलाम ने जो आपका हज और उमरे का अमल बताया जाता है वो यही है कि आपने वुजू फरमाया और आपने तवाफ किया। आपके इस अमल को मद्देनजर रखते हुए बाज ने इसे मुस्तहब करार दिया है और बाज ने इसको वाजिब करार दिया है, लेकिन चूंकि तवाफ का हिस्सा मकाम इब्राहिम की दो रकातें भी इसमें शामिल हैं, और चूंकि नमाज तो बगैर वजू के नहीं होती, तो लिहाजा वही कौल राजेह महसूस होता है जिन्होंने वजू को लाजमी करार दिया है। और वैसे भी बेहतरी और एहतियात का तकवा भी इसी में आता है तकाजा, तो लिहाजा वुजू को लाजमी करार दिया जाए तवाफ के अंदर। अलबत्ता सफा मरवा की सही में वुजू शर्त नहीं है। हम दूसरा अमल देखते हैं कि बिलफर्ज कोई खवातीन में से अय्याम मखसूसा में आ जाती हैं, तो वो सफा मरवा की सही तो कर सकती हैं, लेकिन तवाफ बिल बैत उसके लिए जायज नहीं है। तो शायद वहां भी ये वजह हो कि एक तो ये मस्जिद के अंदर मामला है और दूसरा यह है कि अब उसका वजू नहीं रहा। तो ये जिन्होंने वजू को लाजमी करार दिया, इस तरह तमाम रिवायात से इस्तदलाल किया है, और यही बात बेहतर महसूस होती है।
एक और सवाल ये है कि क्या हम हजरे अस्वद को छू सकते हैं जबकि उसके ऊपर खुशबू लगी होती है और हम एहराम की हालत में होते हैं?
हम खुशबू नहीं लगा सकते, लेकिन खुशबू किसी ने लगाई हुई है और हम उससे मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि हमने उससे मिलना है। एक बहन दूसरी बहन से मुलाकात करती है, एक मोहरमा है गैर मोहरमा है, उसने खुशबू लगाई। एक भाई दूसरे भाई से मुलाकात करता है, वो एहराम में नहीं, उसने खुशबू लगाई है, उससे मुलाकात कर सकता है। तो हम खुशबू लगाने के लिए नहीं गए, हम तो हजरे अस्वद को या रुकने जवानी को छूने गए, और खुशबू उसको लगी हुई थी और उसके असरात अगर मुंतकिल हो गए तो इसमें कोई कबाहत नहीं।
एक भाई ने सवाल किया है कि बाल कटवाने के लिए वो नंबर 3 मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नंबर 3 क्या है, लेकिन मैं कल कोई
जी
भी
वो कसर में आएगा, हल्क में नहीं आएगा। अगर वो मशीन इस्तेमाल करते हैं, भले वो जीरो भी इस्तेमाल करें, वो जो नंबर 3 कह रहे हैं वो जीरो की भी इस्तेमाल करें, तब भी मशीन काटती है और ब्लेड या उस तरह वो मूंढता है। हल्क का माना होता है मूंढना और कसर का माना होता है काटना। लिहाजा अगर वो मशीन चलाता है जायज है उसके लिए, लेकिन वो आएगा मुकस्सरीन में जिनके लिए चौथी मर्तबा दुआ की गई।
इन्होंने पूछा है कि मर्द हैं, अगर वो उनके एड़ी में कुछ कोई कट पड़े हुए हैं तो वो क्या सॉक्स पहन के तवाफ और सही कर सकते हैं?
मर्द हजरात के लिए रवा नहीं है, खवातीन को रुखसत है, मर्दों के लिए नहीं है। हाँ इंतहाई कोई ऐसी कंडीशन हो गई है कि चला नहीं जाता, तो फिर वो इस तरह करें कि टखनों से नीचे वाले सॉक्स पहने, ताकि टखने उनके खुले रह जाएं। वो
और
भी मजबूरी की हालत में, जैसे नबी सल्लम ने फरमाया कि जिसके जूते नहीं हैं तो वो मोजे पहन ले, लेकिन उन्हें टखनों से नीचे काट ले। तो ये कोई मजबूरी है कि चलना उसके लिए नामुमकिन हो गया है, तो इस तरह की कैफियत अपना ले।
ये एक बहन का सवाल है कि क्या साबुन में अगर खुशबू हो तो वो ठीक है या फिर बगैर खुशबू?
हत्तुल इम्कान कोशिश करें, दूसरे साबुन मैसर हैं जहां तक बच सकते हैं। लेकिन बात यहां भी फिर वही आएगी कि जैसे आप एयरपोर्ट पर या दूसरी मीकात पर रुके, वहां जाएं तो वहां जो शैम्पूस वगैरह का एहतमाम होता है, उनमें खुशबू होती है, वॉशरूम से कोई निकलता है, हाथ धोना भी लाजिम है, आगे उसमें खुशबू है, तो वो खुशबू लगाना नहीं कहलाया जाएगा। वो तो हमने हाथों की नज़ाफत के लिए उसे इस्तेमाल किया है और इत्तेफाक से उसमें खुशबू थी। बहरहाल उससे भी इज्तनाब करना औला है, अफजल है, लेकिन किसी ने धो लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो ये खुशबू लगाने के हुक्म में नहीं होगा।
शेख साहब, एक और सवाल है कि आपने फरमाया कि आराम कर सकते हैं होटल में जाके, तो अगर कोई अपने ऊपर अपना कंबल ले लेता है मुंह चेहरे के ऊपर, तो उससे कोई हर्ज तो नहीं है अहराम की हालत में?
जागते हुए तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हालत नींद में अगर चला गया है तो नींद की हालत में इंसान जो है वो मरफू अनिल कलम होता है, उसके आमाल उसकी हरकात को नहीं लिखा जाता, लिहाजा उस पर कोई दम लाजिम नहीं आएगा। लेकिन जागते हुए वो कंबल या चादर अपने सर को उससे बाहर रखे और बकिया जिस्म पे ओढ़ ले, और
और
पाँव
कोई
पर भी उसने डाला है। बास लोग तो ये कहते हैं कि पाँव को भी बाहर निकाल ले, क्योंकि मोजे पहनना तो उसके लिए जायज़ नहीं है, लेकिन जूते वगैरह पहन सकता है, तो कंबल पाँव पे डाल सकता है, अलबत्त सर को खुला रखे। नींद की हालत में चला गया है तो कोई हर्ज नहीं।
शेख साहब, ये मर्दों के लिए या औरतों के लिए भी?
ख्वातीन भी हत्तुल इम्कान, चूंकि चेहरा जो है उनका खुले रखने का मामला है, तो वो भी इसी कंडीशन को ही तरजीह दें और इसी को इख्तियार करें।
ये एक और खातून का है कि वो कह रही है कि उम्रे, क्या वो मास्क पहन के उम्रा कर सकती हैं?
जी, मास्क के हवाले से पिछले दिनों में खास तौर पर बड़े फतावे वगैरह उलमा के आए कि इन द जरूरत जो है मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है, मर्दों के लिए भी ख्वातीन के लिए भी, इन द जरूरत।
खास तौर पे शेख साहब, जैसे हज में काफी ये बीमारियां और ये सब होती हैं, तो उससे एहतियात के लिए अगर कर रहे
जी
हैं
जी इसी इसी चीज को ही मद्देनजर रखते हुए रुख्सत दी गई है।
तो क्या उसका कुछ बाद में कोई दम
कोई
दे?
कफारा नहीं, कोई दम नहीं, कोई कफारा नहीं।
ये एक भाई ने पूछा है कि क्या मैं अपने वालिद साहब के लिए हज कर सकता हूँ जो कि फौत हो चुके हैं?
जी, हज बदल किया जा सकता है, बशर्ते कि अपना हज इन्होंने पहले अदा किया हो। अगर अपना हज अदा कर चुके हैं तो अब वालिद की तरफ से यह हज अदा कर सकते हैं।
और एक खातून का सवाल है कि क्या वो नकाब कर सकती हैं? आपने
नहीं,
बस
नकाब से इज्तनाब करें बिल्कुल कुल्ली तौर पर। अलबत्ता नकाब की मैंने वजाहत कर दी कि जो चेहरे पे बाकायदा कपड़ा अलहदा से बांधने का होता है। हाँ, अलबत्ता ऐसा कि उन्होंने अगर माथे पे कपड़ा रखा है और आगे जब लोगों का हुजूम होता है, लोग सामने हैं, वहां से उसने कपड़ा डाल दिया, हम इसको भी उमूमन नकाब कहते हैं, तो ये उस चादर के हुक्म में है कि किसी ने चादर ओढ़ी है और ऊपर से खींच लिया है हिजाब के तौर पर। तो इस तरह का अगर कोई माथे पे या सर पे कपड़ा बांध रखा है और लोग आते हुए वहां से ऊपर ऐसे पल्लू लटका दिया है तो ये जायज है। लेकिन वो नकाब जो बकायदा यहाँ मुस्तकिल बांध दिया जाता है आंखों के नीचे या नाक वगैरह पे, वो ना बांधे।
शेख साहब, जैसे अगर सामने से लेकर आते हैं तो फिर देखने में मुश्किल होती है, तो साइड से भी ला सकते हैं?
जी, साइड से भी साबित है कि साइड से इस तरह कपड़े को पकड़ सकते।
जजाकअल्लाह खैर। शेख साहब, एक और उनका सवाल है भाई का, कि क्या मैं अपने वालिद का भी और अपना भी हज एक ही हज में कर लूं?
नहीं, एक हज में दो की नियत नहीं की जा सकती। अपना हज इस साल अगर उन्होंने नहीं किया तो करें, फिर जब अल्लाह ताला तौफीक दे तो मरहूम वालिद की तरफ से वो अदा करें। दो का एक नियत के साथ नहीं होगा।
जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा शेख साहब, यहीं तक सब तमाम सवालात थे। और बाकी इंशाअल्लाह ताला आप हमें वक्त दीजिए अगले हफ्ते इसी टाइम पे संडे को
जी बिल्कुल,
इंशाअल्लाह ताला, तो आपसे
जी
बाकी हज के अहकामात हम सीख सकें। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इसको आपके
बिल्कुल,
अमालनामे में वजनी करके तोले और आपको इसका बेहतरीन अजर
आमीन
दुनिया और आखरत में अता फरमाए।
आमीन
और तमाम
आमीन
लोग
भाई
जो
आपका,
शामिल हुए माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनसे भी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला
आमीन
सबको हज मबरूर की तौफीक अता फरमाए।
आमीन आमीन आमीन, बारक बारक अल्लाह। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक,
अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम, अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।